चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते सा सुखनिवेदिता सद्बुद्धसद्भावात् तत् भवे भवे तथा भक्तिपादयस्तव जायते तथा कुरुदेवेश नाथस्त न जत प्रभो नाम संकीर्तनं जैत्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामं सुख समनस्तु संगनमामि हरि परम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नरां चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् नाश्च प्रयेश भद्रेषु नित्यं भागवता सेवयाम् भागवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नाष्टकी श्रीमद्भागवतम नमस्कंध 14 अध्याय श्लोक नंबर 9 तेजम तेजम आसु दुष्पज्ञे मात्क्षेत्रात् आहिताम् परे नाम अहम् त्वाम् भस्मस्वात् पुरियाम् प्रियाम् संतानके असोति तेज तेजासु दुष्प्रज्ञे मत्क्षेत्रात्र दाहितां परे नाहं तं भस्मसात् पुरियाम् प्रियं संतानिके असति तेज तच्चासु दुष्प्रज्ञे मत्क्षेत्रात्र दाहितां परे नाहं तं भस्मसात् पुरियाम् प्रियं संतानिके असति तेज तेजासु दुष्प्रज्ञे मत्क्षेत्र दाहितं परे नाहं तं भस्मसात् पुरियाम् प्रियं संतानिके असति बोलो तेजम बाहर करो तेजम बाहर करो आसु तुरंत दुष्प्रज्ञे मूर्ख पुरुष मत क्षेत्र मेरे द्वारा गर्भित होने वाले क्षेत्र से अहितम उत्पन्न हुआ परे अन्य के द्वारा नाम नहीं अहम मैं त्वाम तुमको भस्मसात् जलाकर रख पुरियाम कर दूंगा प्रियम तुम स्त्री को संतान की इच्छुक असति दुराचारिणी अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा बृहस्पति ने कहा, अरे मूर्ख स्त्री, जिस गर्भ को मेरे बीजों से निषिद्ध होना था वह किसी अन्य के द्वारा निषिद्ध हो चुका है। तुम तुरंत ही बच्चा जनो, तुरंत जनो। आश्वस्त रहो कि इस बच्चे के जन्मने के बाद भी मैं तुम्हें भक्षण नहीं करूंगा। मुझे पता है कि यद्यपि तुम दुराचारिणी हो किंतु तुम पुत्रों की इच्छुक थी, अतः मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। तात्पर्य, तारा की विवाह बृहस्पति से हुआ था, अर्थात अतएव सस्ती स्त्री के रूम में उसे बृहस्पति से वीर्य दान लेना था, किंतु उसने सोम से वीर्य दान लिया, अतएव वह दुराचारिणी थी। यद्यपि बृहस्पति ने ब्रह्मा जी के कहने पर तारा को स्वीकार कर लिया, किंतु जब उन्होंने देखा कि वह गर्भवती है तो वह अधीर उठे और तुरंत ही तारा से पुत्र जनने को कहा। तारा अत्यधिक डरी हुई थी और वह सोच रही थी कि पुत्र जन्म देने के बाद उसे दंड दिया जाएगा, किंतु बृहस्पति ने आश्वासन दिया कि वह उसे दंडित नहीं करेंगे। भले ही वह दुराचारिणी बनकर अवैध रूप से गर्भवती हुई हो, क्योंकि वह पुत्र की इच्छुक थी। इस श्लोक को सुनने के बाद बहुत लोग उच्चारण भी नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग बोलने के लिए कतरा रहे हैं, मैं कैसे बोलूं। इसलिए वेदव्यास ने वृंदावन दास ठाकुर का रूम में चैतन्य भागवत में कहा है, शास्त्रेर ना जाने अर्थ अध्यापना करे, गर्भवेर प्राय पुस्तक बहिया मरे। गाथा देखा आप लोग, देखा है ना? शास्त्र का अर्थ समझ नहीं पाता है, पुस्तक पढ़ते जाता है, उसको गाधा कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में पहले कहा, धर्म पतित कैतव अत्र निर्मत फलानांग शतांग, हम भूल चुके हैं ये श्लोक को, हम सब भूल गया। श्रीमद् भागवत में दूसरा श्लोक है, स्टार्टिंग का दूसरा श्लोक और अंतिम श्लोक क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर सद्य हिद्ये वरुद्य अत्र कृति सुविस्तखनात्। जिस व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम में ओपोरेश ज्ञान नहीं है वो भागवतम क्या पढ़ेगा? अरे ये तो एक औरत दूसरा पुरुष से गर्भ कराया, इसको हम कैसे बोलेंगे? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, साधारण व्यक्ति नहीं है, महामुनि। महामुनि कौन है? जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधार जगन्नाथ। कस्मै जनो विभासी रतमलो गान प्रदीप गुरा तद्रूपे नारदाया तद्रूपने मुनिये कृष्णाय तद्रूपिणे। तेरह अध्याय द्वादश स्कंद तेरह अध्याय का 13 नंबर श्लोक ये तो पढ़ो, जब पढ़ोगे तो भागवत का जो अपौरुष ग्रंथ है जानकारी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये सब कथा भागवत में स्थान दिया है, आगे बोलने के लिए हिचकिचा रहा है। देखो श्रीमद् भागवतों को अमल पुराण कहा है, श्रीमद् भागवतों अमल पुराणम जस वैष्णवानां प्रियं जस्मिन् परमहंसमेक अमलं गानं परं दीयते जत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्करिम आविष्कृतं तच्छिनुन विपठन विचारं परो भक्त्या विमुच्य नर। श्रीमद् भागवतों को ओपोरो समझ के पढ़ना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना है? उन्होंने क्या कहा सनातन गोस्वामी को, लेटर लिख गया मौखिक नहीं लिख के दिया, पर देशनी नारी व्यस्तु गृह कर्मसु, ये लाइन गौरियों का मूल मंत्र है। इसका व्याख्या भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने किया है। जो पर पुरुष में आसक्त है वो गृह कार्य अच्छी तरीके से करता है तो गृह समूह को मालूम नहीं होने देता है कि हम पर पुरुष में आसक्त है। महाप्रभु ने श्लोक लिख के सनातन गोस्वामी को दिया। क्यों दिया? तो हम लोग, अरे हम लोग भी ऐसा ही करेंगे। इसका अर्थ क्या है? पर अभ्यास नारी अंतरे निष्ठा रखो बाह्य लोक व्यवहार अतिरात कृष्ण तुम्हारे करीबे उद्धार। बाहर में वैराग्य दिखाने कोई फायदा नहीं होगा, अंतर में वैराग्य हो। बाह्य बाहर में लोक व्यवहार ऐसा करो लोग समझे ये मैं सबसे बड़ा विषयी हूं, आपको भजन में डिस्टर्ब नहीं होगा। इसलिए गौर किशोर दास महाराज लोगों को धोखा देने के लिए जहां पर सब संदास करता है वहीं पर बैठ के हरिनाम करते थे, लोग तंग नहीं करेगा। ये सब शास्त्र का विचार। यहां कहा गया है तारा ने बृहस्पति से शादी हुआ और अंगिरा ऋषि का पुत्र है बृहस्पति। जबरदस्ती उठा के लेके चला गया चंद्रदेव ने। इसमें मनुसंहिता का ग्रंथ है, क्या पढ़ा आप लोग? नहीं पढ़े होंगे। उस ग्रंथ में दिया गया है अगर किसी स्त्री के साथ किसी ने उनका इच्छा का विरुद्ध कोई व्यभिचार करता है तो उस स्त्री को शुद्धिकरण के लिए 28 दिन लगता है। 28 दिन के बाद जब रजो होता है तब तो उस स्त्री शुद्धि हो जाता है। आजकल गवर्नमेंट ने एक कानून निकाला है जबरदस्ती के द्वारा अगर किसी का बच्चा रह जाता है तो उसको गर्भपात किया जा सकता है। यहां पर इन्होंने कहा हे असती दुराचारिणी, तुमने ऐसा काम क्यों किया? अभी प्रश्न ये उठता है बृहस्पति रोका क्यों नहीं चंद्र को? अगर बृहस्पति चंद्र को रोक सकता था तो यह काम नहीं होता था, लेकिन देखा बृहस्पति हम चंद्र से हार जाएंगे इसलिए रोक नहीं पाया, चंद्र ने उठा कर लेकर चला दिया। अभी उसमें संत गर्भवती है, बृहस्पति पूछ रहे गर्भ किसका है, समझ गया? बोला अभी इसको त्याग कर दो, अभी इसको गर्भपात करो, क्योंकि जिसके द्वारा मेरा पुत्र होना चाहिए था तुम दूसरा का पुत्र धारण किए हो, चिंता करने कोई बात नहीं, मैं तुमको मारूंगा नहीं, क्योंकि तुम पुत्र का अभिलाषी थे इसलिए तुमने ऐसा काम किया। तभी एक स्टोरी आता है, बिचारी में स्टोरी है, राजा ने एक व्यक्ति को दंड दिया और दंड इस प्रकार दिया जब तक उसको मृत्यु दंड दे दिया, सूली में चढ़ा दिया लेकिन प्राण नहीं जा रहा, तो सूली में छटपट कर रहे हैं उसका बाजू में उसका स्त्री बैठा हुआ है रो रहे हैं, उसी जगह से ब्राह्मण जा रहे थे, तो सूली में जो चढ़ा हुआ व्यक्ति ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरा पत्नी से पुत्र उत्पादन करो, क्योंकि मेरे मरने के बाद मुझे तो पिंड प्रदान करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। बोला, मैं फ्री में वीर्य प्रदान नहीं करता हूं, हमें अर्थ दोगे तो हम एक काम कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना पुत्र का जो अर्थ है इसको दे दो। तो ब्राह्मण ने पैसा लेके उनको वीर्य प्रदान किया, स्त्री गर्भवती हो गया। अभी एक दोस्त ने, अभी उसको बीमार गया, अभी दोस्तों ने देखा स्त्री है तो उसको उठा के लेके चला गया। अब वो उसका घर में रहा, कुछ दिनों के बाद उसका संतान हुआ। मृत्यु किसी से रुकती नहीं है, मरना सबको ही पड़ता है, हमको भी पड़ेगा। तो पहला पति तो मरा, जिससे संतान हुआ तो ब्राह्मण वो भी मरा, आज दोस्तों उठा के लेके गया वो भी मरा। अब ये श्राद्ध पक्ष आ रहा है ना, तो तर्पण के लिए जब ये बच्चा तर्पण करने जा रहा, तीनों ने हाथ फैलाया, पिंड हमें प्रदान करो। अब वो लड़का सोचता भी पिंड हम किसको प्रदान करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाप तो तीनों है ना। अभी पिंड प्रदान किसको करेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने पिता इसलिए नहीं है क्योंकि उसका वो कीमत चुकाया था, ये ब्राह्मण को नहीं मिला। दोस्तु जबरदस्ती उठा कर लेके गया था, इसलिए दोस्तु को भी नहीं मिला, जो आखिरी पोति था उसको पिंड प्रदान किया गया। तो जिसका क्षेत्र है उसका ही पुत्र है, स्त्री का जिसका साथ शादी होगा वो किसी से भी संतान उत्पन्न करे तो उसका ही पुत्र कहलाएगा, लेकिन इसको व्यभिचार कहा जाता है। पूरा काल में इसका विधि था, पति का अनुमति से पत्नी दूसरा से पुत्र उत्पादन कर सकते थे। जैसे बहुत सारे माँ मिल गया, देखो जो राजा लोग, जैसे अभी कुछ दिन पहले कलश में पाता था ना, उन्होंने भी दूसरा से संतान उत्पन्न कराया था वशिष्ठ मुनि से, जो भी साहब दे दिया था। अभी आप लोग देखोगे महाभारत में जहां पर राजा पांडु, उसका भी अभिशाप था, उसका भी देवलोक से आशीर्वाद से संतान उत्पन्न हुआ, लेकिन अभी पांडुपुत्र कहलाया, इंद्रपुत्र, धर्मपुत्र ये सब नहीं कहलाया, पांडव पांडुपुत्र कहलाया। जो क्षेत्र जिसका है पुत्र उसका है, ये न्यायोचित अधिकार है, लेकिन वर्तमान जो काल है कलिकाल, इस कलिकाल में इस प्रथा का विरोध है, क्योंकि सही नहीं है। आजकल ये भी प्रमाण देते हैं, आप शादी भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका पहला पत्नी है तो दूसरा शादी करो तो कानून में आपको दंड प्रदान किया जाएगा, लेकिन अगर उसमें संतान नहीं हो रहा है तो कानून के द्वारा आप दूसरा शादी कर सकते हो, उसमें भी पहला पत्नी का स्वीकृति चाहिए। दूसरा कानून अभी कहते हैं, अगर पत्नी पति को सुख नहीं देता है तो डिवोर्स किया जा सकता है, इसका भी 6 महीना वैलिडिटी है, उसका बाद उसको डिवोर्स दिया जाए, कोई कानून इसको रक्षा नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का। अगर ये सब बहुत सारे है, ये सब बोलने का इस रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी इधर भी अगर सुनेगा तो बोलेगा क्या बोल रहा है भागवतम क्लास में। तो यहां पर ये जो दिया गया है इसमें बहुत सारे सिद्धांत, सब सिद्धांत का सार क्या है, अंतिम में भगवत प्राप्ति, दूसरा कुछ नहीं है। भागवत में ये सब चीज दिया गया है, एक एक का लास्ट स्टेज किया जाता है, भगवत भगवान में जाकर पर्यावसन होता है। जितना सारे भागवतम का कथा है, अंतिम परिस्थिति उनका क्या है, भगवान का चरण प्राप्ति। कथा का एंड में ही होता है। इसलिए ये सब कथा जो दिया गया है इसको हमें अगर तच्छिल्ल करेंगे तो क्या होगा, भगवान व भागवत का चरण में, भगवान का चरण में अपराध होगा। हमें अपराध नहीं करना चाहिए, हमें भागवत को भागवत दृष्टि में पढ़ना चाहिए। भागवत प्रत्यक्षर परे घरमल नाना अर्थ आत्मा श्लोक का व्याख्या किया बड़ा सनातन। भागवत का प्रति श्लोक में बहुत सारे अर्थ निकलता है, इसमें आश्चर्य होने का कोई बात नहीं है। अब आश्चर्य क्यों हुए हो, कोई आवश्यक नहीं है। ये सब जो कथा है, ये सब कथा अगर हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण कीर्तन करेंगे, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षयन्ते चैष्ट कर्माणि दृष्टे एवात मनिस्तरे। हम थ्योरी का दर्शन कर सकते हैं, तो हमको भागवत को भागवत बुद्धि में पढ़ना चाहिए, न कि इतर भाव में पढ़ना चाहिए, क्योंकि भागवत निर्मत स्वर का संगीता है। जिसका हृदय में मत्सर होता है वो भागवत समझ नहीं सकता है। मत्सरता धर्म को ताक देना चाहिए तभी ये भागवत समझा जा सकता है, नहीं तो भागवत समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए यहां कहा गया है, यद्यपि तुम दान देने का योग्य हो, वास्तव में सतीत्व का प्रमाण तभी रहता है जब स्त्री अपना पति से संपूर्ण रूप में आश्रित तो रहे। हम लोग शास्त्र में कुष्ठी विप्रो का पत्नी का कहा हम लोग सुना है, उन्होंने पति का सेवा करते रहा। इन पति ने कहा हमें उस वेश्या से संग करना है, तो स्त्री ने जाकर के बाई का काम किया उस वेश्या का घर में, घर सफाई से लेकर कपड़ा धुना धुनी सब कुछ भी करना, सब कुछ करने लगा, वो भी फ्री में। बहुत दिन तक करने के बाद उस वेश्या ने उसको पूछा ये तुम हमारा सेवा क्यों कर रहे हो, हम तो वेश्या है। उन्होंने कहा कि मेरा पोती जो है फिर भी वो तुम्हारा साथ रमन करना चाहते हैं, आप अगर प्रसन्न होकर के मेरा पति का साथ रमन करोगे तो मैं बहुत खुश रहूंगा, इसलिए मैं तुम्हारा सेवा कर रहा हूं। देवता ने कुछ समय विचार किया, बोले एक तो कुष्ठी है, कुष्ठ व्याधि है, इसका सब कैसे किया जा सकता है। लेकिन उस स्त्री छोटी स्त्री का व्यवहार जो व्यवहार देख करके जो अपना पोति के लिए भी वो मेरे ऐसा सेवा कर रहा है, तो उन्होंने सहमत हो गया, जाओ तुम्हारा पति को ले जाओ, उनका सतीत्व से प्रसन्न हो गया। अरे पोति तो चल नहीं सकता है, तो पत्नी उसको पीठ में लेकर के उस वेश्या का घर में आया, और जब उसका पति ने उस वेश्या का घर में आया तो उस वेश्या को देख करके उनका चित्त परिवर्तन हो गया, हमने कितना गलत विचार किया। उन्होंने अपना पति को चलो हम इसी के साथ कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि तो तुम्हारा जो सतीत्व है वो सतीत्व धर्म से मैं खुश हो गया। अब दोबारा जब पीठ से लेके कान्हा में लेके जा रहे थे तब उसका चरण मांडव्य मुनि का बॉडी में लाग दिया, शरीर में, तो उन्होंने तुरंत अभिशाप दिया कि तुम्हारा जो पति है ये सूर्य को दर्शन नहीं करेगा, मतलब सुबह सूर्य उठेगा मर जाएगा। तो उन्होंने मांडव ऋषि को सब कुछ कहा, बोला इसका कोई प्रतिकार नहीं है, बोला ठीक है तो मैं भी देखता हूं सूर्य कैसे आकाश में उगता है। सती झा बोला हमारा भी सतीत्व धर्म है, मैं भी देखता हूं, सूर्य को रोक दिया, सूर्य उठता ही नहीं है। तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों आया है और आ करके बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा पति मरेगा लेकिन मैं उसको दोबारा जीवित कर दूंगा, सूर्य को उठने दो। सूर्य उठा, पति मरा, तीनों ने उसको पति को दोबारा सुस्त और सबल भाव में जीवित कर दिया। ये सती नारी का प्रशंसनीय कार्य है। और आप लोग सावित्री सत्यवान तो जानते ही होंगे, मर गया था, फिर जमराज से अपना पति को लेकर उठा के लेके आया। कैसे लाया? जमराज ने जब आशीर्वाद दिया तुम्हारा सब पुत्र होंगे, बोला हमारा पति को आप ले जा रहे हो तो हमारा पुत्र कहां से होगा? जमराज बोला मैं तो फंस गया, बोला ले जाओ तुम्हारा पति। ये सती नारी, एक बांग्ला में कहावत है, सती नारी पति तरे सब सहे अकातरे। अपना पति के लिए एक सती नारी सब कुछ सहन कर लेता है, ये बहुत सारी चीज जानकारी करने के लिए ग्रंथ बहुत सारे, बहुत सारे पढ़ना पड़ता है, सब पढ़ेगा तो आप लोग को भी सब जानकारी मिलेगा, लेकिन इतना जानकारी करने कोई आवश्यक भी नहीं है, कि ज्यादा भंवर जाल में फंसने का आवश्यक नहीं है, क्योंकि महाप्रभु ने कहा हर से कहें प्रभु सुना स्वरूप राम राय नाम संकीर्तनों को लो परम उपाय। महाप्रभु खुश हो गया, अगले दिन बहुत खुश हो गया, राय रामानंद स्वरूप दामोदर विरह लीला गुरु का दो संगी है महाप्रभु का, उन्होंने बोला हे स्वरूप है राय राम सुनो सुनो बहुत अच्छा खबर है ना, क्या खबर है? नाम संकीर्तनों को लो परम उपाय। होलिकाल में नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा धर्म नहीं है, आर कोनो धर्म कहले नहीं पाए पार, एकमात्र कलयुग में नाम संकीर्तन के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होगा, दूसरा कोई धर्म करने का कोई जरूरी आवश्यक नहीं है। बोलेगा तो भागवत ना पढ़ूं? भागवत क्या है? भागवत में भगवान का नाम का ही संकीर्तन है, दूसरा कुछ भी नहीं है। आराध्य भगवान बजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्मा कथित उपासना भजबोध वर्गेण जा कल्पिता, यही श्रीमद भागवतम में आराध्य जो वस्तु है भगवान है। तो भगवान क्या है? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, भगवान तो बहुत सारे हैं, इन सब भगवान का आराध्य नहीं है, बहुत सारे लोग पूजनीय भी है। आराध्य आराधना आराधक, जिसको सेवा कह रहे थे उसको आराध्य कहते हैं, जिस उपाचार के द्वारा सेवा किया जाता है उसको कहते हैं आराधना, आज जो व्यक्ति कहते हैं करते हैं उसको बोलते हैं आराधक। ये तीनों का परस्पर संपर्क है तो ही आराध्य हो। वो क्या है? ब्रजेश तनय नंद सुनू यशोदानंदन, जो भागवत का गौरवित विषय है, जो पहला से हमारा नव स्कंध तक जा रहे हैं, दशमे आश्रित तव्य श्री कृष्ण नमामितम, दशम स्कंध में वा दशम वस्तु जो आश्रणीय है वो श्री कृष्ण है, परम ब्रह्म जगत धाम तद्धाम नमामितम। ये जो पहले से जा रहे हैं, देखो विचार करके अगर जाओगे श्रीमद भागवतम पहला स्कंद में रुचि करने के लिए कितना सुंदर व्याख्या करके सुनाया, और सुख सुत सैनक संवाद में यही कहा गया नष्ट प्रयेश भद्रेश नित्यं भागवत सेवायाम भागवत उत्तम के भक्तिर्भवतिष्ठ के। श्री गोस्वामी क्या बोला? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु, थोड़ा कुछ रह जाएगा है इसलिए एसु लगाया गया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो थोड़ा बहुत बाकी रखेगा ना वो आपने साधन बोल के निकृत करना पड़ेगा। नित्य अगर भागवत सेवा किया जाए, रोजाना अगर भागवतों को पाठ किया जाए, रोजाना अगर भागवत में अध्ययन किया जाए, अभद्र का नाश हो जाएगा, अभद्रेश अमंगल नष्ट हो जाएगा। नित्यं भागवत सेवया, और क्या होगा, भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नष्ट की, नष्ट की भक्ति का उदय होगा। व्यासदेव ने क्या बोला, भक्तिर उत्पुद्यते पुंस शोको मोहो भयापया। इस भागवतम का श्रवण कीर्तन के द्वारा एवं विध भक्ति उत्पन्न होगा जो शोक मोह भय नाशिनी। अगर हम बोले जी ये चैप्टर खराब है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, वो चैप्टर खराब है, जहां पर कर्दम ऋषि भगवान से क्या बोलते हैं, पत्नी के लिए तो तपस्या कर रहा है, महाप्रु क्या बोलते ना, धनांगण जनांगण सुंदरी को विजांग बाजों को दिशो काम मम जन्म निजन्म स्त्री भगवता भक्ति रही दुबुटी। ये भागवत में कर्दम ऋषि भगवान से प्रार्थना, हे भगवान हमें इस प्रकार पत्नी प्रदान करो, विशेष तपस्या कर रहे, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति वो भी वही काम करने गया, बोला भगवान को दर्शन किया, बोला हमें पत्नी प्रदान करो जिससे बहुत सारे संतान हो जाए। ये सब चैप्टर गलत है, यहां पर अगर देखोगे बहुत सारे ऐसे तीर्थ वर्णन किया गया है जिससे ये सब भागवतम में है। और भागवतम क्या बोलते, अमल पुराण, फिर ये सब क्यों है कि सब कथा का पर्यवसान कृष्ण प्राप्ति में ही है, दूसरा किसी में भी नहीं है। किस महाराज के समझाने के लिए देखो, पर किस तुम्हारे से बड़ा बड़ा राजा लोग, आज तुम्हारे से भी बहुत सारे लोगों का पत्नी था, किसी को तो 1 करोड़ पत्नी था, एकाध नहीं करोड़ों पत्नी, अभी मरा जिंदा नहीं रहा, वो लोग सब मर गया, तो तुम्हें मरने से डरना नहीं चाहिए, तुम क्यों डरते हो, तुम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करो, एक कृष्ण कथा का श्रवण करो, और देखो ये सब राजा लोग इतना सब भोग ऐश्वर्य करने के बाद अंत में क्या किया, जंगल में जाकर आराधना करके भगवत प्राप्ति कर लिया। कि तुम्हारा तो सौभाग्य है तो तुम्हें मालूम पड़ गया कि तुम्हारा भी भगवत प्राप्ति का समय आ चुका है, इसलिए तुम इस विषय में सोचने का कोई जरूरी नहीं है। श्रीमद् भागवतम संपूर्ण ग्रंथ संपूर्ण रूप में समान है, फिर भी कोई कोई व्यक्ति, कोई कोई रसिक भक्त, व्यक्ति बोलना गलत हो जाएगा, कोई कोई रसिक भक्त श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंध का ही श्रवण कीर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि शेषे अधिकारी निष्ठा सागुण परिकीर्तित, जिसमें जिसका निष्ठा है उसका उसका गुण है, तार विपर्जय, अगर इसका विपर्जय होता है तो क्या होता है, पाप नहीं तो अपराध होता है। जिस व्यक्ति जिस जगह में है उसके लिए वही गुण है, उसको बाहर उसको किसी प्रकार का कुछ करने का अधिकार नहीं रहता है, तो उसका दोष होगा नहीं तो अपराध होगा नहीं तो पाप होगा। यही श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जिसे महाप्रभु ने सर्वोच्च कहा है, शास्त्र तारो तारो स्वर में कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ पुराण है, अष्टादश पुराण में श्रीमद् भागवतम ऐसा ही पुराण है जिसमें 10 तत्व का वर्णन किया गया है, स्थान है पोषण मोते मन्यंतरा ईशानों को दा निरोधो मुक्ति आश्रय, ये श्रीमद् भागवतम ही है। तो ये सब कथा जो हम पढ़ेंगे व जो हम सुनेंगे तो हमारा इंद्रिय विकार नहीं होना चाहिए, मनोचांचल्य नहीं होना चाहिए, हम श्रीमद् भागवतम पाठ कर रहे हैं यही समझ के यही सोच के हमें पाठन करना चाहिए। नहीं जिस प्रकार अगर हम सुनते हैं प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य लिखा, प्रभुपाद जी सन्यास नहीं क्या, इसका तात्पर्य क्यों लिख दिया? तो इसका तात्पर्य नहीं लिखना चाहिए था, तो जब इसका तात्पर्य नहीं लिखूंगा, पूर्वा बहुत सारा श्लोक खोलने के बाद इसको ही तात्पर्य लिखा। इसमें सीखने विषय क्या है? स्त्री का सदा सर्वदा पति का अनुगत रहना चाहिए, जिसके द्वारा वो सर्वोच्च सुख प्राप्त कर सकते हैं, अगर उसका पति हरिभक्त है। तो सर्वोच्च सुख क्या है? भगवत प्राप्ति। वो कुछ भी साधन करे चाहे ना करे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्त्री जितना सारे पाप करता है उसका आधा हिस्सा पोती को मिलता है, पोती का बजट बढ़ता है। लेकिन पोती जितना सारे पाप करता है उसका आधा हिस्सा भी कोई एक पैसा भी पोती के पास नहीं जाता है। जितना सारे पुण्य पोती करता है उसका आधा हिस्सा पोती आराम से ले लेता है, कोई टेंशन नहीं है। जितना पुण्य करोगे आधा मिल जाएगा, जितना पाप करोगे उसको एक कपड़ तक भी नहीं जाएगा, लेकिन वो जितना पाप करेगा उतना हमको मिल जाएगा। क्या सिद्धांत है? इसलिए शास्त्र कहते हैं, शास्त्र ने सब जगह रखा देखा, पृथ्वी महाराज का पत्नी अर्की, उसने कुछ नहीं किया, पति का सेवा किया। पति जब मर गया तो उसका साथ अभी चला गया, तो उसको भी पोती लोग प्राप्त हो, मतलब कौन सा लोग? पृथ्वी महाराज भगवत धाम गया, पोती ने भी पृथ्वी भगवत धाम चला गया बिना टेंशन में। तो पति अगर भगवत भक्ति परायण है, पति अगर अच्छी तरह से उस पति का सेवा करता है, तो वो पत्नी हरिनाम करे चाहे ना करे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो भगवत धाम जाएगा, कोई उसे रोक नहीं सकता है। इसलिए छाड़िया वैष्णव सेवा निष्ठार पाया थे केवा, विचार करो शास्त्र, वैष्णव का सेवा कर रहा है तो उसका पति अगर वैष्णव है तो पत्नी क्या सेवा कर रहा है? वैष्णव सेवा कर रहा है, तो हो गया ना फुल डिग्री। हमें इतना मेहनत करके जो नहीं मिलेगा वो पत्नी पति सेवा का द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। इसलिए पत्नी को कभी भी व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, इसलिए दिया गया है। ये सत्ययुग का घटना है, इसमें कुछ तारतम्य नहीं रखता है, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं चलेगा। कलयुग में अगर ऐसा कोई करता है तो घोर नरक में जाता है। उसको क्या मिलता है? 24 नरक पढ़ाना पंचम स्कंध में। उसके लिए शास्ति क्या है? एक लोखन का पुरुष रहेगा और उसमें इतना हिट दिया जाएगा, इतना हिट दिया जाएगा जो एकदम लाल होते रहेगा। आप जो पत्नी व्यभिचार करता है उस पत्नी को उस लोखन का पति का साथ जोड़ दिया जाएगा, कितना अच्छा शास्त्र देगा, वो खुश हो जाएगा। ये व्यभिचारी का ये शास्त्र है जमलोक में। इसलिए पाप पुण्य का विचार दिया जाता है और शास्त्र में सती स्त्री का प्रशंसा किया जाता है, और सती का कोई प्रशंसा नहीं करते हैं। चलो 9 बजे, हरे कृष्णा। ले जाओ ले जाओ। श्रीमद् भागवत मंत्राज जय जय गौर प्रमानंदे। Gracias.